ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयिनं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना दलिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आवाज आ रही पीछे तक? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सबका स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो हर शनिवार को आप भगवद गीता से श्रवण करते हैं, तो आज भी हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय के बारे में, और वो विषय है भगवान का पवित्र नाम। क्या है विषय? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कई शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं, और उनकी जो प्रमुख शिक्षा है, भगवद गीता में भगवान हमें ये सिखाते हैं सर्वप्रथम अर्जुन के माध्यम से। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हैं। जैसे घर में हम देखते हैं बहू को कुछ सिखाना होता है तो सास किसको माध्यम बनाती है? अपने बेटी को बोलती है। बेटी को बोलेगी और तो सास तो जो बहू है वो सीख जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने प्रिय डिवोटी को या भक्तों को इस्तेमाल करते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और उनके माध्यम से जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स हैं, वो सारे जगत के जीवों को प्रदान करते हैं। तो भगवान भगवद गीता में सर्वप्रथम ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि अर्जुन तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो। हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान सबसे प्रथम अर्जुन को इसका ज्ञान देते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप क्या हो? एक चिन्मय आत्मा हो। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि आप मेरे शाश्वत अंश हो। हम किसके अंश हैं? भगवान कृष्ण के शाश्वत या इटर्नल अंश हैं। तो इस प्रकार से भगवान वो शिक्षाएं प्रदान करते करते भगवद गीता के अंत में हमें ये सिखाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स या ज्ञान की हम शरण ग्रहण करते हैं या शेल्टर लेते हैं किसी ना किसी व्यक्ति की या किसी ना किसी स्थान की, किसी ना किसी प्रकार के ज्ञान की। तो लेकिन भगवान कहते कि अर्जुन इन सारी चीजों को एक प्रकार से दूर करो और प्रयास करो कि मेरी तुम एकमात्र शरण ग्रहण करो। तो देखा जाए तो बहुत कठिन है कि नहीं, भगवान की शरण ग्रहण करना ये बहुत कठिन है। लेकिन भगवान एक उपाय भगवद गीता में हमें सिखाते हैं कि सबसे सिंपल एंड सबलाइम वे कृष्ण की शरण ग्रहण करने का, सबसे सरल और सर्वोत्कृष्ट विधि। कोई कह सकता है आजकल के जमाने में हमें सब कुछ शॉर्टकट चाहिए और सब कुछ क्या चाहिए, फास्ट चाहिए। इसलिए हमारा भोजन भी क्या है, अधिकतर फास्ट फूड। हाँ, तो सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ शॉर्टकट चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में सबसे फास्ट चीज देते हैं और शॉर्टकट चीज भी देते हैं। किनको अटेंड करने के लिए, भगवान को अटेंड करने के लिए। तो वो सूत्र भगवान हमें समझाते हैं कि मुझे प्राप्त करने का सूत्र क्या है, मुझे प्राप्त करने का जो सुलभ सूत्र क्या है। हम कोई कठिन चीज को नहीं स्वीकारना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सब कुछ इजी चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं आप, इजी गोइंग लाइफ। कोई नौकरी करना चाहता है, DTDC के बस से जाओ, इतना घंटे दूर, इतने भीड़ में, गर्मी में, ठंड में, और दिन भर कार्य करो और रात्रि को वापस आओ लेट नाइट, फिर सुबह उठ के जाओ। कौन हर रोज जाना चाहता है, हर रोज कोई जाना चाहता है तो ये छुट्टी नहीं होती संडे की। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति अपना एजुकेशन कर रहा है, अपनी हर चीज कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य है कि उसका लाइफ कैसे होना चाहिए, इजी गोइंग लाइफ, है कि नहीं, कूल। कैसे लाइफ होना चाहिए, कूल। तो लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इस जगत में कोई भी चीज कूल नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं माम पैत्यः पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान कहते हैं कि मुझे कई सारे भक्तों ने अटेंड किया है और इस जगत के उन्होंने नेचर को या स्वभाव को समझा है। ये भौतिक जगत एक प्रोडक्ट है, कोई कंपनी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है तो उस प्रोडक्ट पर लिखती भी है कि नहीं। जैसे सिगरेट के बॉक्स में क्या लिखा जाता है कि ये है स्वास्थ्य के लिए है, हानिकारक है। लेकिन इतना सब कुछ होकर भी हम लोग उसको, लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बावजूद भी उसको पीते रहते हैं। तो वैसे ही भगवान ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं भौतिक जगत, जिसको मटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है, और भगवान क्लियरली लिख देते हैं अपना स्टेटमेंट, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं कि ये जगत दुखों का सागर है और दुखों का सागर भी है लेकिन ये अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो इस जगत में देखा जाता है कि जो दुख है वो कैसे है, बहुत विशाल पर्वत के समान है। मराठी लैंग्वेज में कहावत है कि दुख पर्वत के समान है और जो सुख है वो कैसे है, मस्टर्ड सीड के समान। मस्टर्ड सीड को क्या कहते हैं, सरसों के दानों के समान सुख है, और दुख कैसा है, पर्वत के समान है। तो हमें देखें पर्वत को लांगने के बाद दुख सुख कितना मिलने वाला है, इतना छोटा सा मिलने वाला है। हरे कृष्णा, हरे बोल, क्या हुआ, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो पर्वत को जब हम लांगते हैं बहुत कष्ट करके, मेहनत करके, और लांगने के बाद पता चलेगा कि हमें विश्राम करने के लिए कुछ सेकंड है, फिर से दूसरा पर्वत खड़ा है आपके सामने। वैसे ही देखा जाता है, बच्चा एक एग्जाम देता है तो दूसरी एग्जाम उसके सामने खड़ी है, एक स्ट्रगल से गुजरता है तो दूसरा स्ट्रगल उसके सामने पहाड़ के समान खड़ा है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, जिसमें शास्त्र कहते हैं कि पूर्व समय में जो राजा लोग होते थे वो किसी को दंड देते थे, पनिशमेंट देते थे, तो वो कैसे देते थे? उस कैदी को सरोवर में ले जाते थे नाव में बिठाकर, और सरोवर में ले जाकर उसकी उसके बाल पकड़े जाते थे और पानी के अंदर डुबाया जाता था, और पानी के अंदर डुबाकर बाल ऊपर से पकड़ के रखते थे और लंबे समय के लिए डुबाते थे और कुछ सेकंड के लिए ऊपर उसको उठाते थे, तो वो सांस लेता था, और वो सांस लेना उसके लिए क्या था? सुख। वो कहता अभी क्या है, लाइफ कूल है। फिर उसको पता नहीं कि कुछ सेकंड में फिर से उसको डुबोया जाने वाला है, अब फिर से वही कष्ट उसको प्राप्त होना है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जो हमारे पास सुख की आशा है वो उसके समान है। श्रील प्रभुपाद एक अपने प्रवचन में बता रहे थे कि एक व्यक्ति जैसे उसको पकड़ा गया और उसको पनिशमेंट क्या दे रहे थे, कंटिन्यूअसली 23 आवर्स उसके ऊपर जूते मारे जा रहे थे। क्या मारे जा रहे थे? कितने घंटों के लिए? 23 आवर्स, और एक घंटे के लिए उसको छुट्टी दे रहे थे और फिर से उसकी पिटाई। तो हमारी स्थिति इस भौतिक भयावह जगत में उसी प्रकार से है। जनरली ये जो सुख की अभिलाषा है वो एक प्रकार का होप हमारे पास है कि हाँ एक दिन आएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, सुख की अनुभूति करूंगा। इसलिए आचार्यगण लिखते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, इवन हर क्षण हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो साधन है वो हमेशा बदलते रहता है। अभी हमें लगता है कि नहीं अभी तो मैं कुछ कॉलेज में जाऊंगा तो बेटर आनंद अनुभव करूंगा, उसके बाद डिग्री प्राप्त करूंगा तो अच्छा होगा, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, अभी तो माता पिता पीछे पड़े रहते हैं, शादी हो जाएगी तो और उल्लासित हो जाऊंगा, और उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो और आनंदित हो जाऊंगा। तो व्यक्ति केवल इस प्रकार के स्वप्न बनाते रहता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है तभी भी उसकी ये स्वप्न देखने की जो इच्छा है वो कम नहीं होती। और स्वप्न क्या देखता है, एक दिन हम होंगे कामयाब, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं क्या होऊंगा, सुख अपने जीवन में प्राप्त करके रहूंगा। इसलिए शंकराचार्य श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यावत ग्रहित्वा दंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, व्यक्ति पूरा जीवन अपना जी रहा है, और यही शिक्षा छोटे से आयु वाले 5 साल के प्रहलाद का नाम सुना है आपने, हिरण्यकश्यपु के सुपुत्र, हाँ, तो प्रहलाद सेम शिक्षा प्रदान करते हैं, यही शिक्षा। तो श्रीपद शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसका जो अंग है गलने लगता है। अभी हमारे पास यूथ है इसलिए स्वप्न देखने का भूत हमारे ऊपर क्या है, सवार हुआ है, तो लेकिन हम रियलिटी को भूल गए हैं, वास्तविकता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति मूवी थिएटर में जाता है पीवीआर में, वहां देखते रहता है 2-3 घंटे के लिए आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए, और फिर वो स्वप्न ही देखता रहता है, वो सोचता है कि यही मेरा जीवन है, यही लाइफ की असलियत है, लेकिन उसको पता नहीं अभी 3 घंटे के बाद पीवीआर से बाहर निकलेगा तो दिल्ली की जो डीटीसी की भरी हुई बस है और क्या कहते हैं बहुत भीड़ और गर्मी, धक्के खाकर उसको फिर से अपने घर जाना है। तो रियलिटी कुछ और है लाइफ की, और वो रियलिटी हमें कहां से पता चलती है, शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए भगवान इस जगत की वास्तविकता को प्रकाशित करने के लिए भगवत गीता हमें प्रदान करते हैं। ऐसा गीत हम भगवान क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तो एक गीत गाते हैं, और वो गीत गाकर अपने जो भक्त हैं अर्जुन की समस्या को दूर करते हैं। तो वैसे ही रियलिटी क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, अंगम गलितम, अंग क्या होता है, गलने लगता है। अभी तो हम सोच नहीं सकते कि अरे बुढ़ापा भी लाइफ में आने वाला है, लगता है आपको? हमें याद है कि हम इतने छोटे से थे माँ के गर्भ के अंदर, याद है किसी को? नहीं। तो वैसे ही हमें फेस करना है आगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति, कोई घर को आग लगती है तब वो नहीं सोचता कि अभी घर में आग लग गई, अभी जाता हूं कुआं खोदने जाता हूं। बुद्धिमान कौन है? आग लगने से पहले क्या करता है? तैयारी करता है, पहले ही कुआं खोद के रखता है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करना हर एक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। तो अभी तो हमारी स्किन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो स्किन गलने लगती है। आप देखा बूढ़े व्यक्ति को कभी? गौर से देखिए जब आप जाएंगे। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखने से पहले तुम चार चीजों को देखते रहो, और वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानु दर्शनम। भगवान कहते हैं अर्जुन इनका अच्छे से दर्शन करो, मेरा दर्शन ठीक ठीक करने से पूर्व। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गलने लगता है, और दूसरी चीज क्या है? रिएक्शन, पलितम मुंडम। मुंडम मतलब सर, कि बुढ़ापा आता है तो बाल, अभी हम शीशे के सामने जाते हैं तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है हमारा? अपने सौंदर्य को निहारने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अभी कुछ साल रहे हैं बस। जैसे कोई एप्पल आप मार्केट से खरीदते हो, थोड़े दिन के लिए रखोगे तो क्या होगा? फ्रिज में रखते तो कैसे रहेगा? थोड़ा फ्रेश रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो अभी हमारे पास आयु है, थोड़े दिन के लिए हम फ्रेश हैं, फ्रेश फ्लावर, लेकिन कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है? सूखने वाला है। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, अभी बहुत सारे बाल सर के ऊपर है जिनकी गिनती करना असंभव है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि एक भी बाल सर में नहीं बचेगा, हम प्रयास भी करें, जितना मर्जी प्रयास करें बाल को रोक नहीं सकते। दशना विहीनम जातम तुंडम, जब अभी युद्ध है हमारे पास, तो हमारे पास इसमें मुंह में क्या है? सारी क्रिकेट की टीम है कि नहीं? दो अलग अलग टीम्स ऑलरेडी हैं। तो लेकिन वो कहते हैं दशना विहीनम जातम तुंडम, जैसे बुढ़ापा आएगा तो सारे ये जो दांत हैं वो गायब हो जाएंगे। वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम, जो वृद्धावस्था आएगी तो क्या होगा? एक दंडे को पकड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने लाइफ की जो रियलिटी है उसको भूलते हैं, उसको उसे सीखना नहीं चाहते। वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम, इसलिए स्क्रिप्चर्स कहते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा उसके हृदय में रहती है, इतना सारा परिवर्तन हो गया है, क्या उसके हृदय में है? तथापि न मुंचति आशा पिंडम, आशा में से एक होप है। क्या होप है? कि मैं सुखी होने वाला हूं, अभी बस थोड़े दिन बचे हैं मेरे लाइफ के, बस अभी क्लोज जा रहा हूं, सुख उपभोग एंजॉयमेंट की क्या हूं मैं? क्लोज हूं। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से इल्यूजन में या भ्रममय जीवन में जीते हैं। तो देखा जाए शास्त्र कहते हैं कि हम, मैं हमेशा माइक को हाथ लगाता हूं तो वो तो शास्त्र कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सचित आनंद, वो आनंदमयो भ्यासात्, आत्मा बनाए है आनंद से, वो आनंद के बिना नहीं रह सकता। लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए वो इस जगत में प्रयास कर रहा है, जहां उसको जितना आनंद चाहिए उतना आनंद अवेलेबल नहीं है। जैसे प्रसादम की बकेट आ जाए, है कि नहीं? आपको जितना प्रसाद चाहिए उतना बकेट में अवेलेबल हो तो आप पूरा संतुष्ट हो सकते हो। लेकिन आपकी जनसंख्या इतनी अधिक होगी और प्रसाद की आधी आधी बाल्टी होगी, तो क्या होगा? आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्मा की अतोषणीय प्यास है। कैसी प्यास है? जो संतुष्ट नहीं होने वाली, ओशियनिक थर्स्ट है उसकी। तो ऐसी जो प्यास वो बुझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, और किसी भी प्रकार का जो भौतिक ज्ञान है उससे हमारी ये जो अतोषणीय प्यास है वो कदापि पूर्ण होने वाली नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक वस्तु चाहिए, क्योंकि हम कौन है? आध्यात्मिक वस्तु है हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक भगवान के अंश हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस जीव की जो अतोषणीय प्यास है वो तभी बुझ सकती है और वो शाश्वत सुखमय आनंद की अनुभूति कर सकता है जब वो अपने आप को परम भगवान कृष्ण से क्या करे? कनेक्ट करे, उनकी सेवा में तत्पर हो जाए। तो कोई कह सकता है कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है या कैसे भगवान को अपने जीवन में लाया जा सकता है या कैसे भगवान की ओर जाया जा सकता है। उसके लिए भगवान बहुत सरल एक सूत्र हमें सिखाते हैं। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान कहते क्या? अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः। कैसे मैं सुलभ हो जाऊंगा? भगवान तो बहुत दुर्लभ है एक प्रकार से देखा जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग युगों में जो लोग हैं इतनी कठोर खड़तर तपस्या करते थे, कितनी सारी मेहनत करते थे, कितनी सारा कष्ट उठाते थे, कितना सारा त्याग या सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन भगवान भगवत गीता में एक सरल सूत्र हमें प्रदान करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत सुलभ हो जाता हूं। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम। सबसे पहली चीज क्या है? अनन्य चित्त से। और दूसरी चीज क्या है? सततम योमाम स्मरति नित्यशः, कि जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसके लिए मैं क्या हूं? सुलभ हूं। तो भगवान ये बहुत सरल जो विधि है उन्हें प्राप्त करने की या उनको समझने की हमें प्रदान करते हैं। कितना सरल है, आपको पीएचडी प्राप्त करनी है तो उसके लिए बचपन से पढ़ना पड़ता है, हमें बचपन से पढ़ना पड़ता है। फाइनली एक छोटा सा पेपर का एक टुकड़ा मिलने वाला है आपके हाथ में। क्या मिलने वाला है? पेपर का टुकड़ा कि हाँ डिग्री आपको मिल गई। उसके लिए लाइफ कहां से हम स्पेंड करते हैं? बचपन से। अभी चलना भी नहीं आ रहा है तब से बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो भगवान कहते हैं लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए या मुझे समझने के लिए बहुत सरल विधि है, और वो विधि क्या है? कि केवल मेरा स्मरण करना नित्य रूप से या मेरी सेवा करना। तो भगवान की सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? कौन करना चाहता है भगवान की सेवा? हाथ ऊपर कीजिए, सब करना चाहते हैं। तो कैसे की जाए? तो शास्त्र कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदा। कि व्यक्ति सेवा कर सकता है, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा की जा सकती है कैसे? जिह्वा के द्वारा। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। टंग से क्या करते हैं? हम दो कार्य करते हैं अपनी जिह्वा से। क्या है दो कार्य? खाना और गाना। क्या है और क्या गाना?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो दो कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में भी। कोई भी व्यक्ति सुखी है तो सुख को एक्सप्रेस करता है तो दो चीजों से अधिकतर करता है। किसी का बर्थडे हो तो क्या करता है व्यक्ति? कई सारी वैरायटीज अवेलेबल रखता है खाने के लिए और नाचता है। और किसी का मैरिज है तो क्या करता है? वहां भी अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स होते हैं, खाना पीना मौज उड़ाते हैं और लोग नाचते हैं गाते हैं। तो जो चीज हम भौतिक संसार में कर रहे हैं लेकिन सबको यह अनुभव होता है कि फिर भी किसी चीज की कमी है। इतना सारा है, शादियों में नाच नाच के पांव थक गए, खा खा के थक गए, लेकिन जब मंदिर में आके थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद मिलता है
तो हमें क्या लगता है कि नहीं बेस्ट है, और होना चाहिए और होना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान की सेवा सरलता से की जा सकती है, और वो दो विधियों से। एक विधि है मतलब एक चीज से, वो है जीभ से। जीभा से हम शुरू करें भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने के लिए और किसी बड़ी बड़ी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है, और कोई महान क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। एक ही चीज चाहिए, क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ हम जब अपनी जीभा का इस्तेमाल करते हैं और उससे भगवान की सेवा शुरू करते हैं, और वो सेवा है, एक तो है प्रसाद ग्रहण करना, उसकी चर्चा हम फ्यूचर में कभी करेंगे, और दूसरी चीज क्या है? बोलना, भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो अभी हाँ पूरे इस्कॉन में विश्व हरिनाम उत्सव मनाया जा रहा है, वर्ल्ड होली नेम वीक। क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड होली नेम वीक। तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मैप अपने साथ रखो सामने, और किसी भी कंट्री में जहां मर्जी हाथ रखो, वहां 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 इस्कॉन के डिवोटीज वहां क्या कर रहे हैं, उन देशों में, उन सिटीज में, अफ्रीका के जंगलों से लेकर चाइना के बड़े बड़े सिटियों में या भारत के गांव में, सब जगह इस एक सप्ताह के लिए सारे इस्कॉन के डिवोटीज मिलकर क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरे विश्व में सब जगह ये वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जा रहा है, जहां हर प्रकार के जो लोग हैं हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों से हम देखते हैं, चाहे अलग अलग धर्म क्यों ना हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, ये अलग और स्क्रिप्चर्स हो, या जो भगवद गीता आदि है, सब में सब लोग एक चीज में सहमत हैं, वो क्या है कि इवन जो अल्लाह के नामों का उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाता है कुरान के द्वारा, क्रिश्चियंस भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और हम भी हमारे शास्त्रों के आधार पर परम भगवान के नामों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान बहुत अधिक सरल हो जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, जो उनको समझ सकता है, उनको अनुभव कर सकता है। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। कलो शूद्र संभवः, शास्त्र कहते हैं अलग अलग युगों में लोगों के पास इतनी अधिक योग्यताएं थी, लेकिन जैसे कलयुग शुरू होता है तो लोग सारी योग्यताओं से विहीन हो जाते हैं। तो ऐसे अयोग्य लोगों के लिए, अनक्वालिफाइड लोगों के लिए क्या सरल उपाय हो सकता है, जिसके द्वारा वो सरलता से भगवान को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं या आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब कलयुग शुरू हुआ, कोई पूछ सकता है कि कलयुग कब शुरू हुआ? जनरली शास्त्र कहते हैं कि 5000 साल पूर्व कलयुग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो शास्त्र कहते हैं यस्मिन, कहते कि जिस दिन से द्वापर युग के अंत में कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, जिस दिन, उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग का मतलब मुंह में कालिमा फांसने वाला युग। क्या करने वाला? मुंह में कालिमा, मुंह में सारा गंध लगाने वाला, या कलह का युग, जहां बहुत अधिक कलह है, जहां लोगों की आयु बहुत छोटी है, और लोग छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, और लोगों की बुद्धि बहुत कम है। तो इतने सारे दुर्गुणों से ये भरा हुआ जो कलयुग है, तो ऐसे कलयुग के जीव कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? उनके पास ऐसी कोई खास योग्यता नहीं है। तो जब नारद ने ये देखा, नारद का नाम क्या है दूसरा? स्पेसमैन। नारद क्या करते हैं? हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं।
जहां जहां जाए किसी ना किसी को पकड़ते रहते हैं, पकड़कर उसको शिक्षा देते हैं। सबसे अधिक उनके बेस्ट यूथ प्रीचर कोई है तो वो कौन है? नारद है। प्रहलाद उनके डिसाइपल है, ध्रुव महाराज उनके डिसाइपल है, ऐसे कितने सारे दक्ष प्रजापति के इतने 1000 बच्चे उनके डिसाइपल है। नारद का मतलब नाम इज नारायण, या नार का मतलब है नारायण और द का मतलब है देने वाले। तो नारद का एक ही कार्य है कि जिनसे भी वो मिलते हैं उसको भगवान को दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी है तो वो है भगवत भक्ति की, भगवान की। इस संसार में कितनी चीजें हम एकत्रित करने में लगे हैं। कई लोगों के घर जाओ तो घर में इतने सारे रूम होते हैं, 5-10 रूम होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूम। छोटा बच्चा है तो उसका बेडरूम भी अलग है, माता पिता का अलग है, नौकर का अलग है, और सबके घर सबके रूम में क्या है? टेलीविजन है। एक ही घर में 10-10 टेलीविजन होते हैं और हर कोई व्यक्ति अपने आप को उसमें घुसा देता है, अपने दिमाग को क्या करता है उसके अंदर डाल देता है, आंखें तान के देखते रहता है, आंखें बिल्कुल पलक झपकती नहीं, देखते जाता है देखते जाता है देखते जाता है, फिर भी उसे संतुष्टि महसूस नहीं होती। वो हमेशा रिमोट दबाते रहता है। तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है। यदि उसे पूर्ण संतुष्टि मिलती तो डिफरेंट चैनल्स हम बदलते नहीं, या फिर उसको बंद करके किसी और चीज के पीछे भागते नहीं। तो नारद जानते हैं कि इस संसार में व्यक्ति के पास, व्यक्ति के हृदय में बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, बहुत बड़ा छेद है, और उस छेद में हम इस संसार की सारी वस्तुएं डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी चीज आए डालते रहते इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में अनुभव करते कि अरे कुछ तो कमी है, कुछ तो असंतुष्टि का कारण है। फिर हम जानते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में कमी है तो वो किस चीज की है? कि मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है। कौन नहीं है? हाँ, यही तो अर्जुन और कौरव में अंतर था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन तो कृष्ण के महान भक्त हैं, निरंतर वो कृष्ण का नाम लेते हैं, क्या उच्चारण करते हैं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अर्जुन की जिह्वा में सदैव कृष्ण का नाम है, इसलिए भगवान ने उनको कहा माम अनुस्मर युद्ध च अर्जुना, आप क्या करो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये भगवत गीता का सीक्रेट है। तो जब अर्जुन और ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते कि जाओ द्वारका की यात्रा में, जाओ द्वारका जाओ, और द्वारका में कौन निवास कर रहे थे उस समय? कृष्ण। और जाओ और उनसे निवेदन करो युद्ध के लिए। और दुर्योधन भी गया, ये दोनों वहां पहुंचते हैं, आप इससे परिचित होंगे। दोनों जाते हैं तो भगवान आराम कर रहे थे या सो रहे थे, तो दुर्योधन जाकर भगवान के सर में जाके बैठता है। कहां बैठता है? सर के पास जाके बैठता है। और अर्जुन जाके कहां बैठता है? चरणों में। तो दुर्योधन तो परेशान हो रहा था, कब उठेंगे। तो अर्जुन बहुत विनम्रता की भावना से वहां बैठे थे और कृष्ण के नामों का जप कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अर्जुन भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे तो कृष्ण जग जाते हैं। कृष्ण जगते ही सबसे पहले किसी को देखते हैं तो किन्हें देखते हैं? अर्जुन को। भगवान को अपने भक्तों को देखना सबसे अधिक आनंददायी महसूस होता है। तो जैसे ही कृष्ण ने उनको देखा, अरे अर्जुन कब पहुंचे हो आप? इतने दूर से आए हो, दिल्ली से आए हो, कहां से आए हो? आप भी दिल्ली के निवासी हो। तो दुर्योधन कहते मैं यहाँ, इधर देखो जरा, इधर मैं यहाँ हूँ। तो भगवान देखते हैं, दुर्योधन को भी देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि बताइए आप दोनों का आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आप आए हो द्वारका? तो वहां अर्जुन या दुर्योधन दोनों कहते हैं कि अभी हम बहुत बड़े युद्ध की योजना बना रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारा पक्ष लें। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मैं हूं, मैं आऊंगा युद्ध में भाग लूंगा लेकिन कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मेरी उपस्थिति होगी, और दूसरी मेरी बलशाली नारायणी सेना है जिसको कोई हरा नहीं सकता, ओपिलन जो सोल्जर से पावरफुल सेना है। तो दोनों में से चूज करो। दुर्योधन ने कहा कि मेरे लाइफ में कृष्णा निहत्य किसी काम के है नहीं, निठल्ले इनका मेरे जीवन में आने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे अपना कॉलेज जाना है, मुझे अपना लाइफ के कई सारे गोल अचीव करने हैं, मुझे अपने सपने देखने हैं, ये कृष्णा आने से कुछ बदल थोड़ी आने वाला है, ऐसे लगता है कि नहीं हमें? कृष्णा आने से क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा लाइफ में? हमें लगता है कि दुर्योधन की तरह ठीक है, दुर्योधन भी ऐसे ही सोच रहा था। दुर्योधन ने कहा बेस्ट क्या है, ये सेना है जो ना कृष्ण की वही ठीक है, कृष्ण को साइड कर दो और सेना को ले लो। तो दुर्योधन तो बहुत खुश था जब दिल्ली वापस आ रहा था, अरे इतनी अमेजिंग सेना मुझे मिली है, पावरफुल, अभी मैं युद्ध में सबसे सामर्थ्यशाली राजा कहलाया जाऊंगा। तो लेकिन अर्जुन जानते थे, अर्जुन क्या जानते थे कि कौन होने चाहिए मेरे लाइफ में, कृष्ण, क्योंकि मेरे पास जितनी भी योग्यताएं हैं, हमारे पास जितने भी क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है, जो मर्जी चीजें हैं, उनकी तुलना शून्य से की जाती है, किससे, शून्यवत है। यदि शून्य के आगे आपके पास कितने जीरोस क्यों ना हो, लेकिन उसके आगे यदि एक लग जाए तो उसका वैल्यू द्विगुना, तीन गुना, कई गुना बढ़ता है। वैसे ही अर्जुन तो वैसे ही इतने सामर्थ्यशाली थे, इतने क्वालिफाइड थे, हर प्रकार की योग्यता अर्जुन के पास थी, लेकिन उन्होंने चूज किसको किया अपने जीवन में, कृष्ण को। तो उनके उनकी योग्यता, उनके क्वालिफिकेशन आदि में कुछ कमी आई, उनकी ग्लोरीज और डबल हो गई और ग्लोरियस हो गए अर्जुन अपने लाइफ में भी, और अपने चीज अपने जीवन में जो भी अचीव करना था उसमें उन्होंने परफेक्शन हासिल किया। तो अर्जुन ने भगवान को अपने जीवन में चूज किया द्वारका में, कृष्णा आप हथियार उठाओ या ना उठाओ चलेगा, लेकिन कौन होना चाहिए, आप मेरे साथ होने चाहिए। हाँ, तो भगवान आ जाते हैं और हम देखते हैं। हाँ, इसलिए भगवत गीता में संजय कंक्लूड करते हैं तो वहां धृतराष्ट्र को गीता सुनाया जा रहा है और उनको कहते यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर। वो कहते कि जहां कृष्ण है और जहां बलशाली अर्जुन है वहां क्या है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, नीति है, सब कुछ है। तो उसी प्रकार से हम यदि देखते हैं कि हम हमारे जीवन में कृष्ण को ऐड करेंगे तो हम अर्जुन के भांति सामर्थ्यवान या अर्जुन के भांति शक्ति संपन्न हो सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में सारे दोष ही दोष हैं, कलियुग दोषों का सागर है जिसमें से कोई चीज ग्रहण करना असंभव है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन इस कलियुग में है और वो एक अच्छा गुण है इस कलियुग में, और वो क्या है, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना कीर्तनादेव कृष्ण शाह मुक्त संघ परम रजेत। शास्त्र कहते हैं कि एक अच्छा गुण इस युग में है और वो है कृष्ण के नामों का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, तो नारद ने कलियुग के लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति देखी तो नारद ने ब्रह्मा को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ऐसे कलियुग के जीवों के लिए सरल प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने कहा इति षोडशकम् नाम्ना कलिकल्मष नाशनम्। कि ये जो 16 अक्षरों का भगवान का पवित्र नाम है ये कलियुगा के और जीवन के सारे अमंगलता को दूर कर सकता है। हम अपने जीवन से सारे अमंगल दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट विधि क्या है कि भगवान का जो पवित्र नाम है कृष्ण का नाम, वहां नाम का मतलब क्या है भगवान का पवित्र नाम, कोई देवी देवताओं का नहीं, किसका नाम कृष्ण का नाम शास्त्र कहते हैं। इसलिए छोटे से प्रहलाद भी वो अपने स्टूडेंट्स को जो बोल रहे थे तो प्रहलाद ने भी यही कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उन्होंने ये नहीं कहा किसी और देवता का स्मरण आदि नहीं बोला, किसके लिए कहा कि भगवान जो कृष्ण है राम है उनके नामों का उच्चारण, उनके नामों का उच्चारण करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। इस संसार में कोई भौतिक नाम कुछ होता है और उसका उसमें और नाम में अंतर होता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी को प्यास लगे तो आपको प्यास लगे तो आपको कहा जाए कि आज जूस ये जूस नहीं क्या कहते इसको रुआबजा नहीं मिलने वाला, आज पानी नहीं मिलने वाला, तो आपको जब प्रसाद के बाद प्यास लगेगी तो आपको केवल बोलना है रुआबजा रुआबजा रुआबजा, क्या बोलना है तो आपकी प्यास बुझेगी और बढ़ेगी। तो ये रुआबजा और उसके नाम में अंतर है तो, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, वही भगवान का नाम कब से गाया जा रहा है और जितना अधिक हम इसका उच्चारण करते हैं गाते हैं तो उससे जो आनंद है वो और बढ़ने लगता है। जैसे इस संसार में एक व्यक्ति का डेड बॉडी जा रहा था, दूसरे व्यक्ति ने पूछा हरि बोल इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा इसका नाम अमर है। क्या नाम है और क्या जा रहा है उसका, एक डिवोटी जा रहा था अपने कार में तो वो कोई भिखारी आया भीख मांगने के लिए भिक्षा दे ही, तो उसने पूछा अरे आपका नाम बताओ, कहते लक्ष्मीपति क्या नाम है तो इस संसार में नाम और उस वस्तु में बहुत अंतर है, लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में ऐसा नहीं है। नाम नामिनः, भगवान का नाम ही क्या है कृष्ण है, भगवान का नाम क्या है कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भगवान का जो पवित्र नाम है उसका उच्चारण करना सबसे बड़ी साधना है। भगवान को जानना या समझने के लिए एक्सप्रेस वे कोई है, वो क्या है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि नाम सम वस्तुना एव संसारे, नाम से परम धन कृष्णर भंडारे, कि नाम के समान कोई ऐसी पवित्र और शक्तिशाली वस्तु इस जगत में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, उन्होंने जो पोयम लिखी उसमें उन्होंने कहा जब वो यहाँ से निकले भारत से अमेरिका जाने के लिए उनके गुरु ने वो आदेश दिया था उनको सुभाष चंद्र बोस, और वो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज, तो उनके एक मित्र नरेंद्र ने कहा अरे चलो उल्टा डंगा जंक्शन एक एक स्थान है कोलकाता में, वहां एक बिल्डिंग के टेरेस पर एक स्वामी जी कोई प्रवचन देने वाले है आप भी चलो। तो उन्होंने कहा अरे बहुत ही साधुओं को बहुत जानता हो, लाल वस्त्र पहनते और क्या क्या नहीं करते हम सब जानते हैं, तो वो जानते हैं बचपन से कि बहुत सारे ढोंगी साधु हैं। तो प्रभुपाद जिनका नाम अभय था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनके मित्र ने उनकी बाह में हाथ में हाथ डाला और खींचते ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं आना है मुझे नहीं आना है, कहते चलो पहली बार चलो। हाँ तो वो गुरु ने कहा नहीं आना है, लेकिन फिर खींचते उनका मित्र ले गया। हाँ टेरेस में प्रवचन हो रहा था और मायापुर बंगाल से आए हुए एक स्वामी जी साधु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन कर रहे थे, तो उनके जो मित्र उनको ले गए प्रभुपाद को जो अभय कहलाते थे बचपन में ले गए, और जैसे बैठे हैं तो बैठते ही इन्होंने कहा, जो प्रवचन दे रहे थे उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने कहा रे तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हो, नवयुवक हो, तुम्हारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, तुम इस वैदिक ज्ञान का प्रचार करो पाश्चात्य जगत में, जिसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति के लिए है। हाँ, चाहे कोई व्यक्ति किसी रंग आदि भेद का क्यों ना हो, जाति पाति का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है। और फिर उनसे जब सुना तो ये अभय को लगा कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत सारे साधु देखे हैं, उन्होंने देखा कई साधु तो गांजा पूरा दिन क्या पीते रहते थे, गांजा पिया करते थे कुछ साधु तो। अभय कहते हैं कि मैं जब छोटा था स्कूल में जाता था तो घर के पास एक साधु को देखता था, एक व्यक्ति को देखता था जो जैसे सुबह हो जाते थे तो लोग जैसे अपने ऑफिस के ड्रेस पहन के जाते थे ऑफिस के लिए, तो वैसे वो पड़ोसी का व्यक्ति साधु के ड्रेस पहन के जाता था सब जगह धन इकट्ठा करने के लिए, घर आके उतार के रखता था। तो उन्होंने कहा ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन जब उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखा और उनसे सुना तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ ये वास्तव में उचित ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जो कॉलेज डे से उनको ये अनुभव था, तो अपने 70 साल की आयु में जब अमेरिका निकले कोलकाता से बंदरगाह पर, वहां गए जलदूत जहाज पर बैठे अकेले, कोई उनको बाय बाय करने भी नहीं आया, अकेले थे, हाथ में 40 रुपए, एक छाता उनके पास था और एक ही धन था जो इसमें रखा हुआ था, और वो क्या है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे प्रभुपाद पहुंचे, तुमने वो कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा कृष्णा आप मुझे इतने दूर लाए हो, अमेरिका जैसे बेहद स्थान में मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप क्या करो, हाँ मुझे योग्यता प्रदान करो, लेकिन एक चीज है कि मैंने जो आपका पवित्र नाम है उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है, उसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा है। तो प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया केवल 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 कैसे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के बलबूते पर। एक छोटे से करताल को उठाकर टॉपकिंसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में पार्क में गए, उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठकर केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे, भगवान के पवित्र नामों का, जिससे हजारों लोगों को आकर्षित किया और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो पवित्र नाम है मेरा जिसमें सारी शक्तियां निहित हैं, जब हम भगवान के नामों को अपने जीवन में पकड़ते हैं तो हम भी वास्तव में शक्ति संपन्न होते हैं, और यदि हम इस मौके को गवाते हैं तो हम वास्तव में सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। इसलिए शास्त्र बारंबार हमें ये चीज की शिक्षा देते हैं कि हमें जो भगवान का पवित्र नाम है जिसको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और हर रोज भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो जिभा हमें भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए दी है, यदि उसका इस्तेमाल हम बाकी चीजों का उच्चारण करने के लिए करते हैं तो वो हमारे जीवन में अधिक से अधिक दुख को केवल इनवाइट करेगी। जैसे मेंढक है, क्योंकि हम बोले बिना नहीं रह सकते, मेंढक जैसी संध्या होती है तो ड्राव ड्राव करते रहता है, और वो किसको आमंत्रित करता है, सांप को आमंत्रित करता है। तो हम भी अपने जीवा से मेंढक की भांति चिल्लाते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम वास्तव में अपने मृत्यु को इनवाइट कर रहे हैं, अपने जीवन में अमंगलता को इनवाइट कर रहे हैं, दुखों को इनवाइट कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन में मंगलता चाहते हैं, अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपने जीवा का इस्तेमाल हम भगवान के जो नाम है उसका उच्चारण करने के लिए करना चाहिए। और वो नाम कैसे हमें लेना चाहिए, श्रद्धा के साथ, हाँ श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये बहुत उचित है, शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान का हाँ स्मरण करना है या भगवान को सरलता से अपने जीवन में अनुभव करना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान का नित्य स्मरण करना होगा। और भगवान का नित्य स्मरण करने का सरल और सरलतम उपाय है उनके नामों का उच्चारण करना। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक पापों से लदा हुआ है उस व्यक्ति के जीवन से भगवान का नाम कभी निकलेगा नहीं। हाँ जैसे वो वाल्मीकि के बारे में आप सुनते हैं ना, वो डाकू थे। तो जब नारद अपने मित्र नारद एक बार जंगल से गुजर रहे थे, हाँ तो ये जो व्यक्ति था, जो भी व्यक्ति जंगल से गुजरता था उसको लूटता था, मारता था, सारा धन उसका हड़प लेता था और उसी के द्वारा अपना फैमिली का उधर निर्वाह करता था। तो नारद जब वहां से गुजर रहे थे तो नारद को भी पकड़ा, नारद से भी उनको भी वो पकड़े उस वाल्मीकि ने। तो फिर नारद ने कहा देखो तुम इतना सारा पापमय कार्य कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। देखा जाए व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए जीना भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में। हा? तो उन्होंने कहा कि आप उन सबके लिए कर रहे हो और जो इतना भयानक पाप कर रहे हो, आप अपने पारिवारिक व्यक्तियों से जाकर पूछो कि आप जितना लोगों को मार के धोखा देकर ये धन अर्जन कर रहे हो वो पाप में भागीदार होंगे कि नहीं, जिसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जाओ घर में जाकर पूछ के आओ। तो गया, वो घर गया वाल्मीकि और उन्होंने अपने बच्चों से पूछा। जाते ही पिताजी आ गए तो बच्चे कैसे तुरंत दौड़ते हैं पापा पापा कह के। पाप क्या है? पापा मीन्स क्या है? पाप का मूर्तिमान स्वरूप है उनके सामने। तो पापा पापा कहते पहुंचे तो उन्होंने कहा बच्चों जितना मैं आप सबके लिए पाप कर रहा हूँ उसमें भाग लोगे आप? कहते नहीं नहीं, वो आपने तक ही सीमित रखो, हमें तो एंजॉयमेंट चाहिए। पत्नी को इतना धन लाला के दे रहा था, बेचारा कितना कष्ट उठाता है, सारी कमाई उसके हाथ में देता है। और फिर उनको कहा कि मैं ये सारे पाप करके लोगों को मार के धन एकत्रित करता हूँ, ऐसे पाप में तुम मेरी भागीदारी नहीं बनोगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पाप में भागीदार मैं नहीं बन सकती, उसका हिस्सा मैं बांट नहीं सकती। तो ये बहुत परेशान होकर वापस नारद के पास आता है और नारद कहते हैं, ये कहते कि क्या उपाय है? नारद कहते क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, राम नाम का। किस नाम का?
राम
नाम। तो इतने अधिक पाप थे, जैसे कोई बच्चे, मैं एक जगह कहां गया था लास्ट वीक, तो किसी के घर में छोटा सा बच्चा था, तो बड़ा हो गया था काफी बड़ा, वो बोला नहीं जा रहा है उससे। तो मैंने कहा क्या हो गया छोटे, इससे छोटे बच्चे बोलते है फटाफट बोलते है। वो कहते है इसकी जो जिह्वा है ना वो मोटी हो गई है, जीभ क्या है मोटी है, इसलिए शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो जब पाप बहुत अधिक होते हैं तो भगवान का नाम हमारे जीवा से निकलता नहीं, बहुत कठिन होता है। तो ये वाल्मीकि को बोला राम बोलो, वो क्या बोलता था? क्या बोलता था? जोर से क्या बोलता था? हाँ हमारी भी स्थिति वही है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है कंटिन्यू, क्या करो कंटिन्यू करो। तो नारद के वचनों में उनको श्रद्धा थी, फेथ, भगवान का नाम फेथ के साथ हम लेते हैं। तो वाल्मीकि ने क्या किया, बैठ गए एक स्थान में और भगवान राम के नामों का उच्चारण करने लगे। नाम निकल नहीं रहा था, राम राम नहीं, मरा 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 करते जा रहे थे। और फिर कुछ दिन कुछ महीने बीते हैं तो नारद जो घूमते रहते थे अपने एक मित्र को पकड़ के ले आए, कहते चलो हम चलते हैं। तो पर्वत मुनि उनके फ्रेंड थे तो उनको लेके आए और उन्होंने देखा कि अरे कि आवाज कहां से आ रही है। तो देखा तो एक मिट्टी का कवर हो, मिट्टी से वो कवर्ड हो गए थे वाल्मीकि, और अंदर से क्या आवाज आ रही थी, अभी क्या आवाज आ रही थी? हाँ तो भगवान के नामों की,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान के नाम को ग्रहण हमें करना चाहिए और जिसका
उच्चारण करना बहुत सरल और शक्तिशाली है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान के जो पवित्र नाम है, जिनके और भी चर्चा की जा सकती है, इनका आप उच्चारण कर सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हर एक प्रकार के लोग, छोटे से छोटा लेकर बूढ़ा, हर प्रकार के लोग भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, वैसे हमारी चेतना शुद्ध होती है और जो ज्ञान हमें प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली और समर्थवान है, और विशेष रूप से कलियुगा के लिए। आप प्रयास कीजिए कि जो माला नहीं करते वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। हाँ, जैसे हर एक व्यक्ति अपने पास मोबाइल रखता है कि नहीं, आजकल कोई भी नहीं मिलेगा बिना मोबाइल के। तो वैसे ही कृष्ण को, आपने सुना होगा कृष्ण का भी मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता है, और इंस्ट्रूमेंट क्या है? जपमाला। और जैसे मोबाइल के ऊपर कवर भी आता है ना आजकल, वैरायटीज ऑफ कवर है, तो वैरायटीज ऑफ बिल्ड बैग्स है, तो कवर अच्छे आप चूज कर सकते हैं। तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट भी रखिए कई बार, और हमेशा इस संसार में तो मोबाइल, हम किसी को डायल करते तो बिजी आता है, लेकिन इतने लोग कृष्ण को एक साथ डायल कर रहे हैं, लेकिन कभी नंबर कभी बिजी, कृष्ण हमेशा अवेलेबल है। इसलिए हमें केवल डायल करना है, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण महामंत्र के
जय,
हरिनाम संकीर्तन के
जय,
श्रील प्रभुपाद के
जय,
हिताय गौर प्रेमानंदे
हरे
कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो एक दो तो पूछ सकते हैं। हरी बोल। क्वेश्चन क्या है? महामंत्र कितने होते हैं? जैसे किसी राजा के दरबार में आप जाते हैं तो बहुत सारे मंत्री होते हैं और एक महामंत्री होता है, वैसे ही शास्त्र कहते बहुत सारे मंत्राज हैं और फिर एक क्या है, तो ज्यादा महामंत्र नहीं होते, एक ही महामंत्र होता है, और वो क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
क्या आवाज? अर्जुन मतलब हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करें तो कृष्ण हमारे पास नाम के रूप में है, और हमारे जीवन में डिवोटीज होने चाहिए जो अर्जुन के समान है, उनके शेल्टर में हम भगवत भक्ति करें तो निश्चित रूप से फिर सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्तों के संग में, भक्तों के शेल्टर में, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है अभी। यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ बोलो बोलो।
नाम जप करते हैं जो अपराध होते हैं, तो अपराध होते हैं तो मतलब बचने के लिए क्या करा जाए, और उसके बाद हो जाए तो क्या करें?
तो इनका प्रश्न है कि नाम जप के समय अपराध होते तो क्या करना चाहिए और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो नाम जप के समय कई सारे अपराध हो सकते हैं, लेकिन एक रूल हम फॉलो करें, क्या है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें केवल 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 क्या करना है? सुनना है। ये हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है,
कि हमारे जीवा से क्लियर उच्चारण हो और उसको हम ध्यान पूर्वक कानों से सुने, तो फिर हम अपराधों से बच सकते हैं। तो ये सरल है अभी के लिए। कृष्ण में नहीं है, लेकिन वो जो गुण है, जैसे अभी हमारे भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसे कन्वर्ट हुआ है, अभी काम के रूप में है। तो भगवान में गुण है, वो सारे गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या है कि भोग करने की जो तीव्र भावना है, जिसके कारण हम इन गुणों से प्रभावित रहते हैं। तो मेनली यही है कि कृष्ण में अनंत गुण है और वो सारे गुण जीवात्मा में भी हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, उन गुणों से हम अपना स्वामित्व का भाव स्थापित करना चाहते हैं, उन गुणों के द्वारा भगवान को सर नहीं करना चाहते। जैसे कंट्रोल करने की भावना भगवान में है और हम में भी है, लेकिन हम इस संसार में कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लेकिन उसी से भावना से हम भगवान को सर्व करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
मेरा क्वेश्चन है थोड़ा और है, और मेरा क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे मृत्यु शरीर को प्रणाम करते हैं, क्यों?
प्रणाम तो मैंने सुना नहीं, घर के लोग करते होंगे प्रणाम, बाकी लोग तो नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो फाइनल उसको ये देते कि जैसे कोई, तो ये जनरली व्यक्ति, क्योंकि सारे लोगों में देहात्म भावना का बोध है, मतलब अभी उस व्यक्ति को शरीर ही मान रहे हैं ना, तो फाइनल कोई व्यक्ति अतिथि आपके घर से बाहर जा रहा है तो आप कहते ठीक है हरे कृष्ण चलिए, तो फिर से मिलने वाले नहीं है, तो इसलिए जनरली लोग उनको कहते फाइनल। फाइनल क्या कहेंगे, हाँ फाइनल जो भी कहें, ठीक है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे